Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
अमरीश धन्यवाद।
और पहले मुख्य समाचारों के साथ मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग।
Thank you, Amrish. Yes, friends, let's begin with the headlines. Public sector banks show strong performance in first half of current financial year, register 11% growth on yearly basis. India secures position in top 10 countries in patents, trademarks and industrial designs, says World Intellectual Property Indicators 2024 report. Domestic benchmark indices plunge over 1%. Sensex falls 821 points. Nifty settles at 23,883. And India's industrial production records growth of 3.1% in September this year. Retail inflation accelerates to 6.21% in October.
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मजबूती दिखाई, वार्षिक आधार पर 11% की विकास दर अर्जित की। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के 10 बड़े देशों की सूची में जगह बनाई। घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स 821 अंक गिरा, निफ्टी 23,883 अंकों पर आ गया और सितंबर में देश की औद्योगिक उत्पादन दर 3.1% रही। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 6.21% दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, देश की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वार्षिक आधार पर 11% की विकास दर अर्जित की है। इस अवधि में बैंकों ने कुल 236 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें प्रवेश और सेवा उत्कृष्टता में वृद्धि, दिवालिया संहिता पर अमल और प्रशासनिक ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों से वित्तीय स्वास्थ्य की निरंतरता बनी हुई है और बैंकिंग क्षेत्र में कामकाज बेहतर हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का बेहतर प्रदर्शन इस बात को सिद्ध करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने AI, क्लाउड और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाया है और साइबर सुरक्षा के खतरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रणाली विकसित की है। सुषमा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है उनका हुआ है, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे?
देखिए, एक जमाने में माना जाता था कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बहुत स्लो मूविंग है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा एफिशिएंट है और आपको अपना पैसा, अगर आपको ज्यादा आमदनी चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डालना चाहिए। ये बात नहीं है कि अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कुछ की परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत उम्दा हो गई है। अगर आप ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अभी आपने बात की, वो अभी पिछले 6-7 सालों में ये जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें काफी सुधार आया है। इससे पहले आठ नौ साल पहले जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, एनपीएस बहुत बढ़ गए थे क्षेत्र में, तो बहुत फिक्र लगी हुई थी कि भाई बैंकिंग क्षेत्र का क्या होगा। तो उसके बाद आरबीआई और ये सरकार ने, वित्त मंत्री ने काफी कड़े कदम लिए कि जो बैंक्स हैं वो अपने जो क्रेडिट फ्लो है वो जरा ध्यान से करें, और जो उसके बाद ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया है वो भी आ गया था कि जो जहां ऋण है और वो ऋण हमें वापस नहीं मिलने वाले हैं उन कंपनीज का क्या होगा। तो काफी उसके बाद मेजर्स ये भी हुए, रीस्ट्रक्चरिंग, कई बैंक्स जो हैं उनका मर्जर भी कराया गया और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैंकिंग सेक्टर काफी हुआ। तो ये जो टर्म्स जो जो बिल्कुल सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस आरबीआई और सरकार ने किए इसके बाद, कई सालों के बाद ये बैंकिंग क्षेत्र की जो सेहत है वो बहुत अच्छी होगी और उसका नतीजा ये है
जी। और एक दूसरी बहुत अच्छी खबर, भारत विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक शीर्ष 10 देशों में शामिल है। रिपोर्ट में शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोगों में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है। भारत बौद्धिक संपदा आईपी परिदृश्य में एक वैश्विक प्रमुख के रूप में अपनी जगह को मजबूत कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत 64,480 आवेदनों के साथ पेटेंट के लिए वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। पेटेंट कार्यालय ने पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में करीब 150% अधिक पेटेंट दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोगों में 36% की वृद्धि हुई है।
सुषमा, व्हेन वी टॉक ऑफ पेटेंट्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट इफ यू गो फॉर अ पेटेंट there would be a lot of red tapeism, yes. But it seems government with its Make in India, a robust program, Atmanirbhar Bharat, innovation, that we are trying to promote innovation. We've also been accused of spending very little on R&D compared to other countries like Israel and the US. Now, this would give a fillip to our emerging talent. Also, we are the world's third largest startup we have in our country.
Yes.
All this, I think, kind of validates that we are now among the top 10 as far as patents are concerned. And we have created an ecosystem where more patents and therefore more startups and Shark Tank's culture is now coming up.
Yeah, so Lalima, you have really outlined the situation, but I think I must point out that in the past there was a feeling, and it was stated that in India, although we have a vast reservoir of software engineers and we have a lot of technology, focus on technology, a lot of tech companies are here, as you mentioned, startup, yet it was said that these companies or these individuals are not really doing anything very innovative.
Yes.
They are just following the existing trends, and innovation and creative design is being done, inventions are being made in other countries, especially the US and Europe, China, and India was simply following and doing copycat kind of technology. Now this situation has completely changed. I mean, you have mentioned this is important news that we are now in the top 10 of countries in patents, trademarks and industrial designs, and you have so many people who have got involved in innovation. And of course, as you mentioned, this is a result of the government's drive, given a lot of support and stimulus to the startup sector, because this is where a lot of these innovations come. In this context, I must point out that, for instance, when we talk about semiconductors, and that's, really cutting edge technology.
Yes.
India is trying to enter it. Whoever I talk to says, well, in one area, India has an edge, because the biggest pool of semiconductor designers is based in India. All this, so if you want to talk about design in the area of semiconductors, all the people who you need are over here, and that's a very innovative area, creative area, and so we are certainly leading the pack now.
Yes, and we have Atal Tinkering Labs. The government has worked towards it. It hasn't happened by default. Mm-hmm. Like I just said, Atal Tinkering Labs are there, the grassroots level in schools. Mm-hmm. And we have innovative exhibitions coming up in IITs. And I think the result of all this is that now we have about quite a few educational institutions in a recent survey, mm-hmm. which are now amongst the top 100, where there was just one or two earlier, which includes quite a few IITs, including the one in Delhi and Mumbai, mm-hmm. and the IISc in Bangalore.
Yes.
So all the efforts of the government are now bearing fruit. That's great.
और चलते हैं शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं. चौतरफा बिकवाली के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक आज 1% से अधिक गिरे. 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 821 अंक यानी 1.03% गिरकर 78,675 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 258 अंक यानी 1.07% की गिरावट के साथ 23,883 अंकों पर आ गया. बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई. मिड कैप सूचकांक लगभग 1% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में गिरावट 1.2% की रही.
Let's have a look at the stocks in detail now. Domestic benchmark equity indices today plunged over 1% amid sell-off across sectors. The 30-share BSE Sensex tanked 821 points or 1.03% to close at 78,675, while the NSE Nifty 50 dipped 258 points or 1.07 to settle at 23,883. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index fell nearly 1% and the small-cap index shed over 1.2%. In the Sensex index, 25 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, NTPC tumbled over 3%, HDFC Bank shed over 2.7%, and Asian Paints fell over 2.6%. Conversely, among the top gainers, Infosys increased nearly 0.5%, Sun Pharma rose over 0.2%, and ICICI Bank gained 0.1%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of 20 sectors ended with losses. In the top laggards, power declined over 2.7%, utilities dropped 2.2%, and capital goods shed over 2.1%. Meanwhile, the two gainers were Realty, added 0.14%, and Focused IT was marginally up 0.07%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 1,224 companies advanced and 2,744 declined, while 93 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 54 companies hit their 52-week high, while 61 hit their 52-week low. Sushma, we've seen, the Sensex has seen some glorious figures at 85,000 plus. Mm. Now when it's coming down to 79, 78, our heart goes boom, boody, boom. Which way does it? Is it a correction? Or because when it touches 85, people were saying, oh, let's wait and watch. Maybe it'll touch 1 lakh. Mm-hmm. So gold, and they were kind of, there was a competition, subtle competition going on. Is this a correction? And why this decline consistently?
No, I won't call it a correction. This is in response to global developments. And if you see globally, all markets have fallen, barring the U.S. markets. The U.S. markets have reacted very positively to the fact that Donald Trump has won the presidential elections. The other markets, everyone else is rather worried as to what's going to happen with his economic policies. Is there going to be a trade war? I mean, the Asian markets, if you see, they have fallen. I mean, there's a worry. Are there going to be trade wars? Is he going to levy tariffs across the board?
Yeah.
The similar fears in Europe.
Yes.
And in India also. Now, in India, what's happened is, and I think probably the last 4 days, there's been a bearish trend. Foreign institutional investors are moving out. They are moving out to other more lucrative markets like Japan, Taiwan, China. They're moving there. Mm. And they're also moving to the U.S., where the dollar has become stronger. And, of course, there's been a rate cut over there. So with FIIs moving on. But at the same time, unusually, I mean, India's market is very, stock market is very unusual. Any other Asian market would have collapsed, would have crashed. But because our domestic institutional investors have, I mean, if you see the data, the amount that has been that has fled the market today is virtually the same amount that has been pumped into the market by the DIIs. So the market has, though it has fallen, it has not fallen really much.
तो ऐसे में सुषमा जी क्या लगता है कि जो अनसर्टेनिटी है अभी तो जब तक ट्रंप औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण नहीं कर लेते तब तक ये फिर अनसर्टेनिटी इसी तरह से चलेगी. हालांकि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन इस तरह की गिरावट नहीं दिखाई दी थी लेकिन उसके इतने दिनों के बाद ये गिरावट दर्ज की गई. तो ये अभी क्या ट्रेंड इसी तरह से चलने वाला है?
ट्रेंड थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा क्योंकि जब तक वो कुछ ठोस कदम नहीं लेते तब तक थोड़ा सा एंटिसिपेशन है, स्पेक्यूलेशन है, उससे होगा. और हालांकि जैसे मैंने कहा DIIs ने अपनी तो अपना दिखाया है कि हम अपनी मार्केट को गिराने नहीं देंगे. हमारी अभी फेथ है इंडिया स्टोरी में, हमें फेथ है और हम तो अपना पैसा यहाँ स्टॉक मार्केट में डालेंगे. इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी कहानी है ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स की कि इतने रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले 3-4 साल में आए हैं कोविड के बाद. तो ये थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन तो आएगी लेकिन और दूसरी चीजें ये भी है कि जब थोड़ी और अच्छी खबरें हमारी डोमेस्टिक फंडामेंटल्स में आएंगी, शायद अगले महीने खरीफ हार्वेस्ट आएगा, इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, तो उसके बाद शायद यहाँ उस मैं ये नहीं कह रही कि जब तक ट्रंप अपने टैरिफ लगाएगा स्पेकुलेशन, जब यहाँ अच्छी खबरें आएंगी तो जरूर मार्केट मेरे ख्याल इट विल पिक अप.
अभी तो 80,000 भी फिर दूर दिखाई देने लगा है.
80,000 थोड़ा दूर लिख रहा है.
सो नियर येट सो फार.
यस यस.
और जैसा कि आपने सुषमा जी जिक्र किया डॉलर की स्ट्रेंथ का, तो रुपए का हाल भी जान लेते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में आज भी एक डॉलर का मूल्य 84.39 रुपए पर बना रहा. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 105.83 रुपए पर चल रहा था. सुषमा जी आप रुपए का किस तरह की स्ट्रेंथ देखती हैं? हालांकि लगातार ही हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ही चल रहा है. तो आने वाले समय में अगर डॉलर ज्यादा मजबूत होता है तो क्या रुपए की कीमत में ये गिरावट का दौर चलेगा?
थोड़ी बहुत तो चलेगा लेकिन जो अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, उनकी राय ये है, उनकी प्रेडिक्शन ये है कि भारत की जो करेंसी है उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा जितनी बाकी देशों की करेंसीज के ऊपर. तो थोड़ा बहुत तो असर तो पड़ेगा क्योंकि ये डॉलर जो है स्ट्रांग रहेगा ट्रंप के आने से. और ट्रंप ने जो अभी जो उसकी जो नीतियां हैं अभी देखनी है लेकिन जो जिस हिसाब से उन्होंने कहा है तो वहां स्टॉक मार्केट्स बढ़ रही हैं और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है. तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा हमारे रुपए के ऊपर.
राइट. Let's go ahead. India's industrial output rose to 3.1% in September 2024, driven by a rebound in manufacturing activity, as per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. Among the three major components of IIP, manufacturing output climbed 3.9% on a yearly basis in September, while electricity generation grew 0.5% and mining activity increased 0.2% as per the data. And let's take a look at inflation. Now, that's where we may be on the wrong foot slightly. India's retail inflation accelerated to 6.21% in October, up from 5.49% in September of current fiscal year. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas stood at 6.68% compared to 5.62% in urban regions. Meanwhile, food inflation for October 24, based on the All India Consumer Food Price Index, CFPI, is provisionally reported at 10.87%. Corresponding inflation rate for rural and urban areas stood at 10.69% and 11.09%. According to MOSPI, high food inflation in October was mainly due to increase in inflation of vegetables, fruits, oils and fats. The data added that decline in inflation was observed in pulses, products, eggs, sugar and confectionery and spices subgroup. India's retail inflation remained above the central mark's target in October. The Reserve Bank of India aims to keep inflation within a range of 2-6% with a midterm target of 4%. How do you view this?
Well, this is of course rather disturbing news because you know, we had, in August we were at about 3.6%, mm-hmm. and now within 2 months this has virtually doubled. And we must remember that this is higher than the range that the RBI has set as an acceptable tolerable range, 2 to 6%. So this is 6.21%. So now there were hopes that the RBI would cut interest rates, it would follow the US Fed, you know, there was anticipation, but it does not look like in December, when the Monetary Policy Committee will be meeting, there is little likelihood of any interest rate cut at this rate. Also, I think what is significant about the inflation data is that there's a very high food inflation. I mean, as you yourself have pointed out, it is 10.87%, nearly 11%, which is extremely high.
Yeah.
This has had a big impact. And within that, edible oils is fairly high, about nearly 7%. Cereals is also very high. Vegetables has kind of moderated. We always complained about tomatoes. Tomatoes has come down. But onions and potatoes are still strong. So edible oils, one of the reasons, of course, is that there was an import duty, 20% import duty has been imposed on edible oil import. That has had an impact. And cereals is likely to decline now with the Kharif harvest coming into the market. So we expect next month this should decline.
Whatever happened to the rural inflation, Sushma, at 6.68%, more than the average 6.21, because in rural areas you do have a lot of agricultural produce, and in a way people are self-sufficient, you know.
Yeah,
in a way.
Yeah, but you know, it's not, they don't have all the agricultural products at one go, because they are, if they're making onions, they're getting cereals and other products from other parts of the country.
Right.
And for them, transport becomes another factor,
right,
which adds to the cost of products in rural areas.
Right.
So, yes, this is something that is of concern. But I think that it should moderate with the Kharif harvest next month.
Mm-hmm.
But as I said, it will still not enable probably the central bank to cut interest rates.
लेकिन सुषमा जी, भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक तो कोशिश कर ही रही है, भारत सरकार ने भी तमाम तरह के उपाय किए, लेकिन ये जो मुद्रा स्फीति की दर है, ये फिर काबू में आ क्यों नहीं रही?
ये देखिए, ये जो ज्यादातर ये फूड इन्फ्लेशन की जो बात है, वो थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा, एडिबल ऑयल्स के ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटी लगा ली है. अब ये क्यों लगाई है? ये इसलिए लगाई है कि हम ज्यादा से ज्यादा एडिबल ऑयल्स देश के अंदर से, डोमेस्टिक एडिबल ऑयल्स खरीदे, तो ऊपर उसका जो दाम है बढ़ गया है. फिर सीरियल्स का ये है कि अभी खरीफ हार्वेस्ट मार्केट में नहीं आया है, और ये इस साल ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई में हुआ है. अनियंस, जैसे मैंने कहा, प्याज और आलू के दाम अभी बढ़े हुए हैं. तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी सी, एक तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ नहीं होता है ये सब्जियों वगैरह में, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट भी करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है. तो इसका जो सारी नीतियां हैं वो स्टेट लेवल पे ही होती है ज्यादातर.
एग्रीकल्चर इज ऑल्सो हाईली डिपेंडेंट ऑन वेदर.
एग्जैक्टली.
कभी मानसून है, कभी कुछ है.
और भारत और रूस के व्यापार से जुड़ी खबर जान लेते हैं. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के बीच जो 100 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य है, वो 2030 से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा. डॉक्टर जयशंकर, व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि रूस भारत के लिए उर्वरक का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है. रूस से कच्चे तेल, कोयला और यूरेनियम की आपूर्ति वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है.
And look at the direct tax collection. The country's net direct tax collection has witnessed 15.41% growth in this financial year so far, reaching to over 12 lakh 10,000 crore rupees. According to the Central Board of Direct Taxes, CBDT, gross direct tax collection before adjusting for refunds grew 21.2% to over 15 lakh crore rupees during the period of the 1st of April to the 10th of November this year. Refunds of 2,91,000 crore rupees were issued during this period, marking a 53% increase over the same period last year. So as we talk of unprecedented number of DMAT accounts being opened, there are new records being made, Sushma.
Yes,
and
yes.
This is another one. Yes. Direct tax collection has witnessed another, creating another record of
this
sorts.
This is certainly a very welcome development, because what's happening is that our direct tax base has been increasing very rapidly over the last few years.
Yeah.
And one of the reasons is that we have digitized this entire process. You know, there's very little a physical interface with income tax officials. People can just file their returns online. They can get their direct tax, their tax refunds online.
Yes.
And this has made life easier. So many people who were not filing tax returns have now entered into the, they have come into the formal sector and they are filing them. So this is because the income tax system has been made more easy, procedures made more
that's
easy.
That's also adding to the government's kitty now.
Yes,
because
of course.
Much development work is happening. So it's adding to the country's development.
Correct.
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर दिखाई दिया. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 3% गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.4% तक नीचे आ गया. सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में गिरावट 0.5% से अधिक रही, जबकि जापान का निकेई 0.4% गिरा. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी आज निराशा का माहौल बना रहा. दिन के कारोबार के दौरान अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 1% से अधिक गिरा, जबकि लंदन के फुटसी में गिरावट लगभग 1% की रही. जर्मनी के डेक्स में 0.8% से अधिक की गिरावट चल रही थी. आप सुषमा जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, हालांकि जैसा आपने कहा कि एशिया और यूरोप अक्रॉस गिरावट ही आज दिख रही है.
हाँ हाँ, पर चाइना के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मार्केट सारा एशियन मार्केट्स है, जो स्टिमुलस चाइना ने अनाउंस किया है, उसको उसका कुछ असर नहीं हुआ है मार्केट्स के ऊपर. और लगता है कि ये लोग समझते हैं कि ये काफी नहीं है चाइना की, चीन की जो इकोनॉमी है उसको जरा बढ़ावा देने के लिए.
Right. U.S. stocks logged gains yesterday, led by surge in stocks expected to benefit from Republican President-elect Donald Trump's potential fiscal policies. The Dow Jones Industrial Average advanced over 0.6%, S&P 500 gained 0.1%, and Nasdaq Composite was marginally up 0.06%. You made this comment that U.S. Economy is doing well post Donald Trump because of his of his American first policy.
Absolutely.
All right, let's take a look at oil now. Oil prices inched up today. Brent crude was trading over 0.8% up at $72.46 per barrel, and WTI crude gained nearly 1% to trade at $68.68 per barrel when reports last came in.
और सराफा बाजार का हाल देख लेते हैं. सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.4% गिरकर 75,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.15% गिरकर 89,020 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.42% गिरकर 75,037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.15% गिरकर 89,044 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. सुषमा जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू अम्बरीश.
And before we wind up, here's a look at the headlines. Domestic benchmark indices plunge over 1%. Sensex falls 821%. We'll start with another headline. Public sector banks show strong performance in first half of current financial year, register 11% growth on yearly basis. India secures position in top 10 countries in patents, trademarks and industrial design, says World Intellectual Property Indicators 2024 report. Domestic benchmark indices plunge over 1%, Sensex falls 821 points, Nifty settles at 23,883. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Friends, for now, goodbye. Market Mantra.